Good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444-2371-7106, and we do have a third dedicated line, that's 2331-0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। आज रविवार है और हरेक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर सीधे फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं हमारे सहयोगी एस रंगभाष्यम।
थैंक यू अम्बरीश। द टॉप स्टोरीज। फाइनेंस मिनिस्टर सेज इंडियाज जीडीपी विल ग्रो बाय 8% और मोर इन द करंट फिस्कल ईयर। Combined market valuation of 7 of the 10 most valued firms climbs to 67,259 crore rupees, and FPIs become net buyers in March 2024, injecting 35,098 crore rupees into Indian equities.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% या इससे भी अधिक की वृद्धि होगी। 10 सबसे अधिक बाजार मूल्य वाली कंपनियों में से 7 का सम्मिलित बाजार मूल्य 67,259 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मार्च 2024 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में 35,098 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और आज की पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% या इससे भी अधिक की वृद्धि होगी। मुंबई में निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के प्रभाव से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था में इसी दर से वृद्धि की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही में 8.4% की वृद्धि रही, जो इससे पहले की तिमाही में दर्ज 7.6% की वृद्धि से आगे थी। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में 8.4% की वृद्धि दर के बाद विभिन्न आर्थिक संस्थाओं ने भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों को बढ़ा दिया है। हाल में आया सबसे ताजा अनुमान वैश्विक वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स का है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2024 के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को अपने पिछले अनुमान से 10 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया है।
Yamini, what would you say about this particular news? Really, encouraging 8% GDP growth. And we have had a fairly good growth in the third quarter as well, October, December. And now in this January, March quarter, something similar is expected. And for the entire fiscal, 8%, that's really commendable, isn't it?
Well, we can see economic growth, which is fast-paced and much higher than what the world markets have been observing. where the world markets are growing at about 2%, India growing at 8% is definitely something which we can actually say that is a good growth. When we talk about, again, economic growth parameters, there has been a lot of factors in terms of the domestic consumption factor, which has played an important role there, and that does add on to the overall growth. Besides the capital expenditures which the government has been doing in terms of the infrastructure development and various other structural reforms have also played an important role. But it does also bring about a certain amount of a concern because India is a globalized economy and one needs to recognize that the world scenario in terms of a low growth rate vis-a-vis India at a very high growth rate does make India an outlier among all growth stories that are there. Factors of inflation and various other important economic, macroeconomic stability factors need to be strengthened and ensure that they provide the necessary requisite strength to the economy.
Yeah, we'll talk more about the GDP and the macroeconomic fundamentals. But before that, let's start taking phone calls, as this is a phone-in program. We have Prem Chandra Premi joining us from Delhi. Good evening and welcome to the program.
नमस्कार
सर. नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछिए.
सर, मैं पिछले हफ्ते दो बैंकों में गया था, तो एक बैंक में मैनेजर साहब से बात हुई, तो म्यूचुअल फंड के लिए पूछी थी, तो उन्होंने बोला आप ले सकते हैं आप, तो दूसरे बैंक के मैनेजर बोलते हैं ये सब ठीक नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड में हमें कुछ पैसा लगाना है, हमें जानकारी नहीं है, हम नए फील्ड में है, इसकी कैसे कहाँ लगाना.
प्रेमचंद्र जी, आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है?
नहीं सर, जो हमारे मैनेजर साहब ने बोला था उन्होंने ही हमें गाइड किया था कि आप लगा सकते हैं, तभी हमें जानकारी मिली कि इसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं.
ओके.
जो होने वाली है तो मैं कुछ इसमें अमाउंट डालना चाहता था, तो उन्होंने राय दी थी, और दूसरे साहब बोलते हैं कि नहीं, इसमें ठीक नहीं रहेगा आपके लिए.
राइट राइट.
देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, आप अपना एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करें कि आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं और आप किस तरीके से अपने प्रिंसिपल के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं या उसे सेफ गार्ड करना चाहते हैं. उसी के तहत आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं या डेट फंड्स होते हैं या बैलेंस्ड फंड्स होते हैं या स्पेसिफिक ग्रोथ फंड्स होते हैं या कुछ थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को देख करके या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करते हुए बनते हैं. जब भी कोई नया निवेशक होता है और अगर उनके पास बहुत अमाउंट नहीं होता, तो ज्यादातर कहा जाता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा वो निवेश करें. और आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसी में सहूलियत दी जाती है कि आप म्यूचुअल फंड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या आरबीआई सिक्योरिटीज में भी निवेश कर सकते हैं. तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स के प्रोग्राम जरूर सुनते रहिए, और बहुत सारे और प्रकाशन आते हैं जो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंसेस के बारे में बताते हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और वो कितनी प्रोपोर्शन किस सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं और कहां तक निवेश करते हैं और उनके क्या पास्ट परफॉर्मेंसेस रहे हैं, वो आपको पता चलते रहेंगे.
राइट. एंड यामिनी, एट दिस जंक्चर आई वांट टू ब्रिंग इन दिस पॉइंट, सिंस यू नो प्रेमचंद्र जी पुट दिस क्वेश्चन, देयर आर स्टिल ओल्ड टाइमर्स हु काइंड ऑफ ट्राई टू इक्वेट स्टॉक मार्केट्स विद समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग, एंड दे से दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ नो नो एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट. बट यू हैव कम अ लॉन्ग वे. स्टॉक मार्केट इज नॉट एट ऑल गैम्बलिंग, दिस इज बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, इजंट इट?
Any investment which does not carry sufficient due diligence, that means that there is not sufficient work that has been done in understanding where you are investing, why are you investing, and what is the intrinsic value on which you are betting, and how are you likely to see the returns either on a revenue basis or on a capital appreciation basis, and how does it really meet your life goals or investment objectives, becomes a speculation. So a lot of times people invest into stock markets at hearsays or at these statements of their stockbrokers or friends, or let's say when the markets are going up and then they feel that they may not lose a chance. But when they do it based upon the fundamentals of what the company businesses are, how the company has been performing, what is its future growth and the prospects, they automatically become investments rather than speculations.
Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani, and we are discussing mutual funds and related issues. And just to remind our phone numbers are 2331-4444, and our second line is 2342-1050. 2342-1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers.
Aur yahan par hamare shrota Yogesh ji line pe hain, unka sawal lete hain. Yogesh ji, apna sawal poochiye.
Ji, namaskar.
Namaskar ji.
Sir, mera sawal ye hai ki ma'am, jo hum fixed income allocation mein debt funds mein jo invest karte hain, isme ek hum short term debt fund mein aur ultra short term mein karte hain. इसके अलावा क्या क्रेडिट रिस्क फंड में भी करा जा सकता है, क्या ये भी सेम तरीके के फंड होते हैं? ये मेरा सवाल है.
जी देखिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स प्राइमरली एक जो स्पेसिफिक नीड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए होते हैं, या जो पर्टिकुलर मनी मार्केट इन डेट फंड्स होते हैं उनके लिए होती है. जहां तक क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, वो बेसिकली एम्ड होते हैं टू ओवरकम जो रिस्क फैक्टर है, खासतौर पे क्रेडिट देने पे, उनसे रिलेटेड होते हैं. सो दीज आर अगेन डिफरेंट थीमेटिक फंड्स, बट अगेन इट डिपेंड्स कि वो मनी मार्केट फंड्स हैं या लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है. जब भी आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में देख रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स या डेट्स में इन्वेस्ट करें. अगर क्रेडिट रिस्क फंड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली, देन वो फंड्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में आते हैं. अगर वो नहीं इन्वेस्ट करते तो उसमें नहीं आते.
Right. And Yamini, going back to the GDP story, you know, 8% growth in a financial year. But let's, you know, kind of try and do a mini review of the, you know, macroeconomic fundamentals at this juncture. What would you say? India is fairly, you know, well placed, whether we talk of the GDP, whether we talk of inflation. Inflation has come down within the, you know, targeted range of RBI. Our forex reserves are really good, $640 billion and counting. So, overall, you know, exports, they are doing fairly well. So, overall, the macroeconomic picture is kind of rosy right now?
Well, I would take a more conservative view on that, because I do feel that there are international and domestic factors which are at play besides just the economic numbers. And among those international factors are the geopolitical risks that still continue to play an important role, which is the Red Sea crisis and the peace making efforts that are still on a continuous basis between the Israel and the Hamas war. Also, the Russia-Ukraine war has not seen an end as yet, and there still creates a lot of problems there.
But having said that, you know, crude prices have still been stable, you know.
Yeah,
fingers
but then
crossed,
there but is a meeting in the month in this month itself where the OPEC is meeting, and there would be decisions in terms of the supply cuts or an increase accordingly. And there is a talk in terms of how energy difficulties are still building on, and the supply chain constraints on the global level because of the geopolitical tensions tend to be there. Also, when we talk about the domestic factors, yes, we see a GDP growth rate there, but there are other concerns which also are a part of it, which includes that there are about 80 crore people we are feeding through the PM Samman Kisan Samman Garib Kalyan
Yojana.
So when we talk about overall macroeconomic factors and inflation, global supply chain factors play an important role. Also, the fact that we are looking forward for a more normal monsoon this time, which can definitely bring in better results. Also, the high frequency indicators, which were the automobiles, there were news that there might be a discount rally that might come in, which is not a very good sign. and most important, that many economies in the world are not likely to be seeing a very good economic situation mm-hmm. that does not bring about an export.
Yeah.
And one of the most important factors is elections, which does bring about a change in the socio-political structures across the world. I don't say only India. And these are important democracies and important countries that are going to go in for elections that will decide the forward-looking structure.
It's a wait-and-watch policy.
Yes.
और मुंबई से हमारे श्रोता हरीश लाइन पे. हरीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हेलो
हेलो हरीश, डू वी हैव यू ऑन लाइन? आई थिंक वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद हरीश. वेल नेवर माइंड, हैपन्स इन अ लाइव प्रोग्राम लाइक दिस. लेट्स गो अक्रॉस टू आवर अदर कॉलर. वी हैव अमित ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मुंबई. गुड इवनिंग अमित एंड वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो अमित.
यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर?
जी जी, सवाल पूछिए.
थैंक यू सर. एक्सपर्ट से दो सवाल थे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड और डायनामिक फंड, इसमें स्ट्रेटेजी में फर्क क्या है? और दूसरा ये था कि जो एचडीएफसी का जो निफ्टी 50 जो अभी एक नया फंड था, और एक निफ्टी 30 भी है एक कुछ टाइप का, तो इसमें कुछ क्या फर्क है क्या?
आपने डायनामिक फंड पूछा और दूसरा कौन सा था?
फ्लेक्सी कैप.
जी देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड की आप बात करते हैं, ये स्पेसिफिकली उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं. एक डायनेमिक फंड होता है जिसमें एक्टिव कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होती है, चेंज इन द पोर्टफोलियो होता है, और लेकिन उसकी स्कीम की वो किस बेसिस पे कितना इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट सिक्योरिटीज में वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, पर उसमें जो वो चेंजेस करेगा वो उसको डायनेमिक रखता है. फ्लेक्सी कैप अगेन की कितना कैप इन्वेस्टमेंट जाएगा उसके ऊपर स्पेसिफाई करता है. जहां पे निफ्टी 50 है या निफ्टी 30 की बात करें, तो अगर आपको पता हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है जिस स्टॉक्स के अंदर एचडीएफसी इन्वेस्ट करेगा, और उससे उस कॉर्पस को जो वो इन्वेस्ट करेगा उस म्यूचुअल फंड को वो निफ्टी 50 कहेगा. ऐसे ही निफ्टी 30 जो है वो ही उस पे उन सिक्योरिटीज में जो निफ्टी 30 में आती हैं उनमें निवेश करेगा.
और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं. संजय जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
हाँ, मैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन को मोबाइल पर देखने का फॉर्मेट चेंज हो गया है कुछ दिनों से, उसमें पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है, पीयर कंपेरिजन रिटर्न का नहीं दिख रहा है, बहुत ही इनकन्वीनियंस हो रहा है. प्लीज पहले वाला ही फॉर्मेट लागू कीजिए, ये वाला फॉर्मेट बहुत ही इनकन्वीनियंट है.
जी देखिए, आप जिस भी बैंक के द्वारा या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के द्वारा निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी ने अपना डैशबोर्ड चेंज किया होगा, या उसने एक नया कोई डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, या जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर से अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसमें कुछ बदलाव किया होगा. तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप जिससे भी बैंक है तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर लें, वो आपको समझा देंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो या अपना निवेश कैसे देख सकते हैं. और अगर स्टॉक ब्रोकर से किया है तो उनकी एक हेल्पलाइन नंबर होती है और आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर डेडिकेटेड होता है, उससे बात कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे कि किस टैब को दबाने से या किस चीज को देखने से आपको आपकी जो जानकारी आप चाहते हैं वो मिल जाएगी.
एंड यामिनी, मेनी टाइम्स द ओल्ड वेबसाइट ऑल्सो इज फंक्शनल टिल सम टाइम द न्यू वेबसाइट पिक्स अप और द पोर्टल पिक्स अप जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस.
यूजुअली दे डू गिव, जो पुरानी वेबसाइट है उसका भी एक कहीं ना कहीं लिंक दिया जाता है, पर जहां तक मैं आपकी समस्या समझ पा रही हूं, वो वहां पे कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन हुआ है या चेंज हुआ है यूजर इंटरफेस में, इसलिए शायद वो आपके टैब्स हैं पर आपको नहीं पता कि कहां पे क्लिक करना है.
राइट, एंड लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ लुक एट सम ऑफ द अदर स्टोरीज दैट वी आर फॉलोइंग फॉर दिस इवनिंग. द कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 7 आउट ऑफ द 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स क्लाइम्ब टू 67,259 करोड़ रुपीज इन अ हॉलीडे शॉर्टेंड लास्ट वीक, विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज इमर्जिंग एज द बिगेस्ट गेनर amid an overall optimistic trend in equities. Reliance Industries continued to rule the chart of the most valued firms, followed by TCS, HDFC Bank, ICICI Bank, Bharti Airtel, State Bank of India, Infosys, LIC, ITC and Hindustan Unilever. Markets saw just 3 trading sessions last week as they were closed on Monday for Holi and on Friday for Good Friday. The valuation of Reliance Industries jumped 45,262 crore rupees to reach a mammoth 20,14,010 crore rupees. State Bank of India added 5,533 crore rupees, taking its valuation to 6,71,666 crores. The valuation of Life Insurance Corporation climbed to 5,78,484 crores. ICICI Bank, HDFC Bank and Hindustan Unilever also added a significant amount in their market capitalizations. Listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani.
यामिनी जी, हम देखते हैं कि जो नए निवेशक होते हैं वो शेयर बाजार की जगह म्यूचुअल फंड रूट ही अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर उनके सामने एक समस्या आती है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। अगर उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है तो वो इस बात में फंस जाते हैं कि इक्विटी बेस्ड शेयर लें कि डेट बेस्ड लें कि बैलेंस म्यूचुअल फंड लें। तो ऐसे जो निवेशक हैं, आपको आप उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगी?
जी, मैं यही कहूंगी कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक एसोसिएशन है आईमा करके, जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन, उसके साइट पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी जानकारी अवेलेबल है। सेबी की वेबसाइट पे भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी जानकारी अवेलेबल है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में एक खास तौर पे जो आपको ध्यान रखना है वो पहली बात आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। दूसरा, आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई भी उम्र है उसे 100 से माइनस कर दीजिए। अगर आप 25 साल के हैं तो 100 माइनस 25, दैट मीन 75% तक आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं 75% तक या 65% तक या कोई एक पर्टिकुलर कैप तक, तो आप उसके लिए इक्विटी ग्रोथ फंड्स में जा सकते हैं। ऐसे ही कोई भी फंड है उसकी जो स्कीम आती है उसको ध्यान से पढ़ें। उस स्कीम में बताया होता है कि वो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, वो किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा, आपके जो कोई कॉस्ट होगी वो कॉस्ट कितनी लगेगी, एंट्री कॉस्ट कितनी है, एग्जिट कॉस्ट कितनी है या TER चार्जेस कितने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाती है। और आप दूसरा, अपने बैंक से या आप अपने स्टॉक ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। म्यूचुअल फंड की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी देखिए और उनके जो प्रीवियस जो बाकी के बेंचमार्क्स के साथ वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी प्रकाशन है उनसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप छोटी इकाइयों में निवेश करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक माध्यम होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने निवेश कर सकते हैं 500 रुपए से शुरू करके, तो उससे भी आपका पैसा बन जाता है म्यूचुअल फंड निवेश के अंदर।
एंड लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर। वी हैव सुखदेव जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम।
गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी।
या
सर, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मी टैक्स। आई वांट टू नो दैट द मिनिमम स्लैब रेट नाउअडेज फॉर इनकम टैक्स इज 5%, but here is the TDS being deducted at 10%. Earlier the minimum was 10% and TDS was 10%. It was okay.
Okay.
But now the TDS being deducted at 10%, why it has not been shifted to 5%?
Reduced. Okay.
Why the disparity?
Got it. Got it.
Yes. TDS is a tax deducted at source. इसका माध्यम यही है कि जब आपको कोई इनकम होती है तो जो भी आपको वो पैसा दे रहा है वो टैक्स को जो है पहले जो है डिडक्ट कर ले। इनकम टैक्स स्लैब में कमी करने का फायदा था रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस लाना, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम रेट का फायदा पहुंचे। पर टीडीएस का जो मुख्य स्तर पे ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये है कि टैक्स जो है जिस सोर्स से जनरेट हो रहा है उसे लिया जाए। और क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तब आप बता सकते हैं कि आप किस स्लैब में आते हैं। और अगर आपका टीडीएस ज्यादा भी कटा होता है, उसके अंदर आपका 26AS है, उस फॉर्म में आपके सारे जहां से टीडीएस कटे हैं या जहां से इनकम आई है वो सारा मेंशन होता है, आप उसके लिए रिफंड मांग सकते हैं, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
राइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। इन अ सिग्निफिकेंट मार्केट शिफ्ट, foreign portfolio investors or FPIs have become net buyers in March 2024, injecting some 35,098 crore rupees into Indian equities. This surge was observed across various sectors, including capital goods, automobiles, financials, telecom and real estate. Despite some late selling in the month, activity levels were notably higher than the subdued performance seen in January and February. In the first 2 months of 2024, FPIs were net sellers of floating equities worth 25,744 crore rupees in January and making purchases of only 1,539 crore rupees in February.
यामिनी जी, जो म्यूचुअल फंड में लोग निवेश करते हैं तो फंड का चुनाव करने के बाद उनके सामने जो दूसरी बड़ी समस्या आती है कि उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी होती है, कब रिडीम करने पर वो अपने टैक्स को बचा सकते हैं और कब करने पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं, तो जो टैक्स की लायबिलिटी है इसके बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देना चाहें।
जी देखिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमें दो तरह के फायदे होते हैं। पहला है डिविडेंड्स जो हमें मिलते हैं म्यूचुअल फंड से, और दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड्स म्यूचुअल फंड समय समय पे अनाउंस करते हैं जो आपके पास पैसा आता है, पर क्योंकि अब डिविडेंड्स इनकम टैक्स पेयर्स के हाथ में एसेसिबल है तो उन्हें अपनी इनकम में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ना पड़ता है और फिर जो स्लैब में वो आएंगे उसके ऊपर टैक्स रेट पे करना होगा। जहां तक कैपिटल गेन्स की बात है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर से इनकम में ऐड होगा और जो टैक्स स्लैब्स हैं वो लगेंगे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म टैक्स रेट पे करना होगा।
राइट, एंड बिफोर वी आर यू नो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, बिफोर वी कंक्लूड, व्हाट वुड यू से फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, शुड दे यू नो गो टू इक्विटी फंड्स और टू स्ट्रिक्टली यू नो डेट फंड्स और मे बी यू नो हाइब्रिड फंड्स?
वेल, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। वेन यू आर ऑन अ यंगर फोल्ड यू कैन टेक ग्रेटर रिस्क, बट वेन यू आर टूवर्ड्स मोर ऑफ अ रिटायरमेंट एज और अबव 50, देन रिस्क शुड बी लेस। सो आफ्टर 50 अ मोर डेट ओरिएंटेड फंड इज प्रिफर्ड, एंड बिफोर 50 बिकॉज यू हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ इनकम एन इक्विटी फंड इज प्रिफर्ड।
Right, that's it. We'll have to call it a day. We'll have to thank all our callers for their active participation in today's program. And Yamini, as always, thank you so much for joining us in the studios. And before we close, a quick look at the top stories. Finance Minister says India's GDP will grow by 8% or more in the current fiscal year. Combined market valuation of 7 out of the 10 most valued companies climbs to 67,259 crore rupees, and FPIs become net buyers in March 2024, injecting more than 35,000 crore rupees into Indian equities. And with that, we come to the end of this edition. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market.